कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को हमारे साथ बांटिए और प्रार्थना के साथ सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी हमेशा की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए रेडियो के निकट बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं, विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों दूसरे राजाओं के पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हमने देखा है कि बहुत से राजा हुए, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी राज्य के राजा हुए जो बुरे और अच्छे दोनों थे। और हमने यह भी देखा कि बहुत से राजा जो अच्छे हुए उनकी माताओं के नाम आए हैं और इसी के साथ जो बुरे राजा हैं उनकी भी माताओं के नाम हमने देखा है। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्यवस्था की पुस्तक का मिलना, जिसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 8 पद से आरंभ करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 8 पद। लिखा है, और हिल्किया महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किया ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। मेरे मित्रों, ध्यान रखें कि इसराइल राष्ट्र में नव जागृति लाने वाला तीसरा कारण था परमेश्वर का वचन। उनका धर्मशास्त्र खो गया था और आराधनालय ही में रखे रखे वह खो गया था। अब उन्हें जब धर्मशास्त्र मिल गया तो उन्होंने उसे पढ़कर अपने जीवन में व्यवहारिक बनाया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन ही एकमात्र हमारा हथियार है। परमेश्वर का वचन जीवित और सत्य है, सामर्थ्य है और दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, जैसा कि हम इब्रानियों के लेखक से सुनते हैं, इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में। इसमें छोटा मार्ग तो है ही नहीं, आसान मार्ग भी नहीं है, इसमें नव जागृति का कोई नया तरीका भी नहीं है। मेरे प्रियो, आज मसीही साहित्यों में पुस्तकों की भरमार है। मैंने इन पुस्तकों में से कुछ को पढ़ा है और पाया है कि उनमें जान नहीं है। समस्या क्या है? वे परमेश्वर के वचन की अपेक्षा विधियां सुझाती हैं। उनमें कहीं नहीं लिखा है कि हम परमेश्वर के वचन में लौट आए। मेरे प्रियो, हमें इन पुस्तकों की अपेक्षा परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। हमें मासिक पुस्तकों की नहीं परंतु अनंतकालीन पुस्तक की आवश्यकता है, जो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि आज हम कलीसियाओं में देखते हैं कि लोग मासिक पत्रिका पढ़ते हैं परंतु परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। आज कितनी कलीसियाएं परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं और उसका प्रचार करती हैं। यद्यपि विश्वास योग्य पासवान अब भी हैं, बहुत पासवान विश्वास से भटक गए हैं, उनकी कलीसियाओं में बाइबल खो गई है। आपको सुसमाचार की कहानी से स्मरण होगा कि जब यूसुफ और मरियम बालक यीशु को मंदिर में ले गए तब वह खो गया था। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास कीजिए, यीशु और बाइबल दोनों आज कलीसिया में खो गए हैं। हिल्किया महायाजक को मंदिर में परमेश्वर का वचन मिला, क्या उसे वह मलबे में दबा मिला था? जी नहीं, उसने मंदिर में उसे पाया था, क्योंकि वह खो गई थी। धर्मशास्त्र को पुनः स्वीकार करना नव जागृति का आरंभ है। मेरे मित्रों, क्या आपकी बाइबल खो चुकी है? क्या आप उसे जबरदस्ती छुपा करके रखे हैं? क्या आप उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं? आज आपको भी इन सारी बातों का जवाब देना है। कुछ समय पूर्व मैं एक युवा प्रचारक से बातें कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरी अध्ययन विधि क्या है। मैंने भांप लिया था कि उसने सब पुस्तकें पढ़ ली थी, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें भी उसने पढ़ी थी। उसकी बातों से मैं थोड़ा लज्जित भी हुआ जब उसने पूछा कि मैंने यह या वह पुस्तक पढ़ी है। मैं हर एक पुस्तक के लिए नहीं कहता रहा। अंत में उसने पूछा, क्या आपने पुस्तकें पढ़ना छोड़ दिया? मैंने उससे कहा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, ये नई नई पुस्तकें मुझ में रुचि जागृत नहीं करती हैं, क्योंकि वे विधियां सुझाती है। उसने पूछा, तब आप क्या पढ़ते हैं? मैंने उससे कहा, मैं बाइबल पढ़ता हूँ। तब मैंने उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, आप प्रति सप्ताह वचन के अध्ययन में कितना समय लगाते हैं? उसका उत्तर सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। वह सप्ताह में केवल एक घंटा परमेश्वर का वचन पढ़ता था। उसने अपनी समस्याओं का उल्लेख मुझसे किया था और उसे उपचार सुझाना अब आसान था। उसे परमेश्वर के वचन में उतरने की आवश्यकता थी। मेरे मित्र, हो सकता है कि आप भी पूरे सप्ताह में सिर्फ एक घंटा परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको परमेश्वर के वचन में उतरने की आवश्यकता है, गहरे में जाने की आवश्यकता है। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया कि जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किया याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। मेरे प्रियो, कल्पना कीजिए, योशिय्याह पहली बार परमेश्वर का वचन सुन रहा था। दूसरे सामुएल की पुस्तक 22 अध्याय के 11 पद में लिखा है, व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। मेरे मित्रों, नवजागृति का चौथा चरण है मन फिराव। परमेश्वर का वचन पढ़ने से मन में पश्चाताप उत्पन्न होता है। राजा ने गहरी भावनाएं व्यक्त करते हुए अपने कपड़े फाड़े। क्यों? क्योंकि वह वचन सुनकर उन्हें पाप का बोध हुआ। वचन के अभाव में उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वह एक पापी व्यक्ति है या परमेश्वर से वह कितना दूर हो गया है। परमेश्वर के वचन को सुनने से नवजागृति आती है। उनमें आई नवजागृति आज के उन समूह जैसे नहीं थी जो जागृति सभाएं करते हैं। वे तो भोज का आयोजन करते हैं और सब प्रचारकों को आमंत्रित करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि वे मीठी मीठी बातें करें और सकारात्मक बातों द्वारा सबको एकत्र कर लें। मेरे प्रिय मित्रों, सच्चे मन फिराव के बिना नवजागृति नहीं आती है। मुझे एक अति उत्तम विश्वासी के विषय सुनी घटना स्मरण आती है। वह कलीसिया के पदाधिकारियों के समक्ष खड़ा हुआ और कहने लगा, इस कलीसिया के लिए आवश्यक है कि पदाधिकारी परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिर कर पश्चाताप करें। आप जानते हैं कि उन्होंने उसकी बात पर क्या किया? उन्होंने उसे कलीसिया से निकाल दिया। वे उसे देखना भी नहीं चाहते थे। अच्छा होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। उससे अपराध बोध उत्पन्न होगा, तब रोना होगा और तब कपड़े फाड़ना होगा और सच्ची जागृति आएगी। मेरे प्रिय मित्र, मैं नहीं जानता कि आपने सच्चा पश्चाताप किया है या नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के सम्मुख आए और सच्चा पश्चाताप करें, तब आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में नवजागृति आएगी। दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें ना मानी कि कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। मित्रों, ध्यान दीजिए, योशिय्याह भयभीत हो गया क्योंकि वह समझ गया था कि वे परमेश्वर के दंड के योग्य है। परमेश्वर नबिया हुल्दा के द्वारा योशिय्याह को वचन देता है। उससे परमेश्वर का दंड और अनुग्रह दोनों प्रकट होते हैं। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डाला चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराए देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी। योशिय्याह के प्रति परमेश्वर के अनुग्रह पर आप ध्यान दीजिए। दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुन करके इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और श्राप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डाला चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 23 में देखेंगे यशिया की उत्तरोत्तर आत्मिक जागृति। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 1-3 पद में। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास इकट्ठा बुलवाया और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याचकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया और तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंभे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चेतावनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। और सब प्रजा वाचा में संभागी हुई। मेरे प्रियो, उन्होंने प्रण किया कि वे वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, उस पर आचरण भी करेंगे, उसके निर्देशों का पालन करेंगे। हम कलीसिया में जागृति ला सकते हैं, परंतु पापों का बोध केवल परमेश्वर के वचन से उत्पन्न होता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो मन में अपराध बोध उत्पन्न होता है, तब आवश्यक है कि आप मन फिराएं। मेरे मित्रों, मन फिराव का अर्थ है सब बातों को सही करना। मन फिराव का अर्थ है कि पीछे मुड़कर विपरीत दिशा में चलना, अर्थात यदि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो पीछे मुड़कर सही मार्ग पर चलने लगे। एक तरीके से कहें यू टर्न, मतलब साइड से मुड़ना। मेरे प्रियो, मैंने एक प्रचारक के बारे में सुना है जिसने जागृति सभा में एक सप्ताह प्रचार किया परंतु एक ने भी मन नहीं फिराया। एक रात कलीसिया के एक अगुए ने आगे आकर पश्चाताप के आंसू बहाए। उसके इस व्यवहार से कलीसिया का ढाड़स बंध गया। वही एकमात्र मनुष्य था जो उस कलीसिया में नवजागृति में बाधा था। उसने जिसके साथ गलत किया था उसने उससे क्षमा मांगी और परमेश्वर पूरी रात प्रार्थना में उसे उसके अनाचार का बोध कराता रहा। उसका जीवन सही नहीं था। वह उस व्यक्ति का द्वार खटखटाता जिसके साथ उसने बुरा किया था और कहता, मैं आपके साथ संबंध सही करने आया हूँ। पूरी रात उसकी यही गतिविधियां रही। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह किसी को मध्य रात्रि जगाता तो किसी को सुबह जगाता और उस संपूर्ण नगर ने जागृति देखी। मेरे प्रियो, यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक मनुष्य ने मन फिराया था। राजा यशिया का प्रभाव जनता पर बहुत अधिक था। अब वह एक अत्यधिक निर्भीक योजना को पूरा करने जा रहा था। उसके मन फिराव ने उसे क्रियाशील कर दिया। उसका पहला काम था मंदिर से मूर्तियां हटवाना और मूर्ति पूजा का अंत करना। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, तब राजा ने हिल्किया महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गण के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किंद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। मित्रों, ध्यान दीजिए कि मूर्ति पूजा की सब वस्तुएं किंद्रोन के खेतों में जलाकर भस्म कर दी गई। यरूशलेम के बाहर राख को नगर से बाहर कर दिया गया कि प्रजा उनकी राख को भी न देख पाए। इसके बाद यशिया ने अनैतिकता दूर की। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, फिर पुरुष गामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे जहां स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी उनको उसने ढा दिया। मेरे प्रिय मित्रों, आज कलीसियाएं समलैंगिक संबंधों का अनुमोदन कर रही हैं। परमेश्वर रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में कहता है कि उसने इस अप्राकृतिक व्यवहार के कारण एक जाति का त्याग किया है। मेरे विचार में यदि हमारा देश इस व्यवहार के प्रति मुस्कुराएगा तो परमेश्वर हमारे देश को भी त्याग देगा। योशिया में साहस था कि वह समलैंगिकों को दोषी ठहराए और यही नहीं उन्हें देश से निकाल भी दे। कलीसिया इसका अनुमोदन करना चाहे तो भी यह अनुचित ही है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें इच्छा रखने वाले वयस्कों और किशोरों में इस व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए। यह बिल्कुल उचित है। उनसे किसने कह दिया कि यह उचित है? मेरे मित्रों, इसके पक्ष में अपना निर्णय देना आपके अकिंचन मस्तिष्क की समझ से बड़ा नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आपकी अकिंचन समझ और मेरी अकिंचन समझ ऐसे बड़े निर्णय नहीं ले सकती है। परमेश्वर ने कहा है कि समलैंगिक संबंध उसका दंड ले आएंगे। पूर्व काल में ऐसा हुआ है और परमेश्वर बदला नहीं है। हम बदल गए हैं, परमेश्वर नहीं बदला है। योशिय्याह एक बहादुर राजा था और उसने समलैंगिकों को देश से निकाल दिया। योशिय्याह ने शिशु बलि भी बंद करवाई। हम देखते हैं मोलेक को शिशुओं की बलि चढ़ाना। दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, जहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर उसने तोपेत को जो हिन्नोम वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे व बेटी को मोले के लिए आग में होम करके न चढ़ाए। योशिय्याह ने पूर्वगामी राजाओं द्वारा स्थापित मूर्तियां, वेदियां, ऊंचे स्थान, वृक्ष कुंज आदि सबको तुड़वा दिया। वह यहूदा के बाहर बेतेल तक गया। मित्रों, दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय के 33 पद में इसका सारांश प्रस्तुत करता है। योशिय्याह ने इसराइल के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इसराइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। यह एक अति रोचक बात है कि बेतेल में उसने उस भविष्यद्वक्ता की कब्र देखी जिसने उसके इन कामों की भविष्यवाणी की थी। इसे हम पहले राजाओं के पुस्तक 13 अध्याय उसके 2 पद में देख सकते हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 17 और 18 पद में। तब उसने पूछा, जो खंभा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार करके की जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई न हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो सोमरोन से आया था रहने दी। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि योशिय्याह का एक महान कार्य था और उसने फसह के पर्व का फिर से पुनः आरंभ किया। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय के 21 से 23 पद में पढ़ते हैं, और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायियों के दिनों में माना गया था जो इसराइल का न्याय करते थे, और न इसराइल व यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिय्याह के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि फसह मनाना एक बड़ा काम था। प्रकट है कि वर्षों से फसह नहीं मनाया जा रहा था, उन्होंने उसे अनदेखा किया था। इसका अर्थ क्या है? फसह मसीह यीशु का प्रतीक है। वे फसह के पूर्व रूप से विस्मृत कर चुके थे। पहले कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस कहता है कि मसीह हमारा फसह हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। आज हमारा धर्म मसीह से रहित है। मसीह का ईश्वरत्व सेमिनारियों में और प्रचार मंचों पर निंदित किया जा रहा है। मसीह की मृत्यु का मूल्य अस्वीकार किया जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है। मसीह के लोह के महत्व को कुछ लोग प्रचार मंच से अधर्म कहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, किसी देश के उद्धार का कारण केवल नवजागृति ही हो सकता है। अब आप पूछेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। 16वीं शताब्दी में लूथर, कॉल्विन, ज्विंगली जैसे सुधारकों द्वारा एक महान जागृति लाई गई थी। वाइक्लिफ और जॉन नॉक्स धर्म सुधार आंदोलन के पूर्व के धर्म सुधारक थे। सत्रहवीं शताब्दी में एक और जागृति आई जिसे व्यूटीरन अभियान कहते हैं। 18वीं शताब्दी में अंधकार के युग में एक और जागृति आई जो वेस्ली और व्हाइटफील्ड की अगुवाई का परिणाम था। 19वीं शताब्दी में परमेश्वर के निकट आने का ऑक्सफोर्ड में एक महान अभियान चला और प्रचारक अभियान का उदय हुआ। इसी शताब्दी के अंत में मूरी और किनी ने महान अभियानों की अगुवाई की। अब ध्यान से मेरी बात सुने। 20वीं शताब्दी एक भी विश्वव्यापी पृथ्वी कंपन की जागृति नहीं आई। कुछ स्थानीय जागृतियां अवश्य आई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यदि वे जुलूस निकालेंगे, नारेबाजी करेंगे तो बदलाव आएगा, परंतु आवश्यकता है कि आंतरिक अपराध बोध को हमें अपने शिथिलता और उदासीनता को पहचानना है। अंतिम बार आपने अपनी शिथिलता को कब देखा और उदासीनता प्रभु के समक्ष स्वीकार की थी? क्या आपने आज उससे कहा कि आप उससे प्रेम करते हैं? मेरे प्रिय मित्र, वह आपका उद्धार करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अंधकार के युग में भी पूर्व युगों की नाई हम में नव जागृति आ सकती है। योशिया की कहानी से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। उसके राष्ट्र के जीवन के अंधकारपूर्ण समय में जागृति आई थी और यह आज भी आ सकती है। हम देखते हैं योशिया की मृत्यु। यशिया की कहानी में अब एक दुखद घटना घटती है कि यहूदा के राज्य के अंत में एक महान जागृति आई थी और शीघ्र ही उसकी प्रजा दासत्व में चली जाएगी। परमेश्वर यह दिखाने के लिए सामर्थ्य रूप से क्रियाशील हुआ कि वह गहन अंधकारमय समय में और कठिन समय में जागृति ला सकता है। मेरे मित्रों, अब जागृति के अंत में क्या हुआ? दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 29 पद में हम पढ़ते हैं, उसके दिनों में फिरोन नको नाम मिस्र का राजा अशुर के राजा के विरुद्ध परात महानद तक गया, तो यशिया राजा भी उसका सामना करने को गया और उसने उसको देखते ही मगिद्दों में मार डाला। मेरे मित्रों, यशिया को घर में ही रहना था। उसे इसमें हस्तक्षेप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। यह उसका युद्ध नहीं था, परंतु वह उसमें भागीदार हुआ और परिणाम क्या हुआ? वह मगिद्दो में मारा गया। यह वही स्थान है जहां अंतिम विश्व युद्ध होगा। यशिया परमेश्वर का एक महान भक्त था, परंतु वह मूर्ख था। वह उस युद्ध में गया जिससे उसे कोई प्रयोजन नहीं था। मित्रों, हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं, तब उसके कर्मचारियों ने उसकी लोथ एक रथ पर रख मगिद्दो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाई और उसकी निज कब्र में रख दी। तब साधारण लोगों ने यशिया के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। यहोआहाज का राज्य और विस्थापन। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 31 से 33 पद में पढ़ते हैं, जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हमूतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं की नाई वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौन नको ने हमाद देश के रिबला नगर में बांध रखा ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किकार चांदी और किकार भर सोना जुर्माना किया। मेरे मित्रों, आपके विचार में यहोआहाज अपने पिता के धर्मी चरण चिन्हों पर चला होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह एक दुष्ट राजा था और सच तो यह है कि वह सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया। उसका राज्य 3 महीने का ही था। फिरौन को उसका राज्य प्रबंध अच्छा नहीं लगा और वह उसे मिस्र ले गया और वहां उसकी मृत्यु हुई। कई बार हमारे माता पिता हम बच्चों पर सही असर नहीं छोड़ पाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि माता पिता अच्छे होते हैं परंतु बच्चे बुरे होते हैं। मित्रों, इसे भी मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे प्रभु के भय में बढ़ सकें। हम आगे देखते हैं कि यहोयाकीम राजा बनाया गया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 34 से 37 पद में हम पढ़ते हैं, तब फिरौन नको ने यशिया के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता यशिया के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा और यहोआहाज को ले गया। सो यहोआहाज मिस्र में जाकर वहीं मर गया। यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों में जितना जिस पर लगान लगा उतनी ही चांदी और सोना उससे फिरौन को देने के लिए ले लिया। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम जबीदा था जो रूमावासी अदाया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। मित्रों, यहाँ पर भी आप देखिए कि यहोयाकीम योशिय्याह का दूसरा पुत्र था। उसने 11 वर्ष तक राज्य किया परंतु वह भी एक दुष्ट राजा था। हम बद से बदतर की ओर जा रहे हैं। यहोआहाज एक दुष्ट राजा था और यहोयाकीम उससे भी अधिक दुष्ट था। मित्रों, इस समय पूर्व दिशा में परात नदी पर एक महान शक्ति बेबीलोन का उदय हो रहा था। बेबीलोन अशुर देश को पराजित करने वाला था और बेबीलोन ने अशुरों को पराजित किया भी। बेबीलोन मिस्र पर भी विजयी होगा। वह पहली विश्व शक्ति होगा जैसा दानियल की पुस्तक में भी व्यक्त है। अब समय आ गया है कि हम यर्मिया की पुस्तक को पढ़ें। यर्मिया इस समय का महानतम भविष्यत वक्ता था। वह इसराइल को परमेश्वर के निकट आने की पुकार करता था। उसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे परमेश्वर के निकट नहीं आए तो बेबीलोन उन्हें बंदी बनाकर ले जाएगा। इसराइल को उसकी बात में समझदारी दिखाई नहीं दी क्योंकि उस समय बेबीलोन एक अजय वैरी नहीं था। मित्रों, झूठे भविष्यवक्ता इसराइल से कह रहे थे कि परमेश्वर उनके बिना नहीं रह सकता क्योंकि वे उसके चुने हुए लोग थे। यरूशलेम परमेश्वर का चुना हुआ नगर था। उसका पवित्र मंदिर वहां पर था। अंततः वे जान लेंगे कि परमेश्वर उसके बिना निर्वाह कर सकता है। सच तो यह है कि परमेश्वर के मंदिर की आवश्यकता नहीं थी। वह शीघ्र ही ध्वंस किया जाएगा। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखा है और निश्चय ही इसके द्वारा अपने जीवन को आपने जांचा है। प्रभु आपके सही निर्णय लेने में सहायता करे और आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो।